हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ऋषभ ने गुस्से और बेबसी से भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, दोस्तों और दुश्मनों की शायद पहचान नहीं है तुम्हें। चलो मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ पर नहीं रुकोगे बस। इतना कहकर ऋषभ ने समर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए क्लब के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। दरवाजे के पास लोग कम थे, इसलिए समर वहीं रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ऋषभ ने पूरा जोर लगाकर उसे अपने साथ दरवाजे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन समर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब ऋषभ रुक गया, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, अब यहाँ पर क्यों रुक गए हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। समर ने अपने और ऋषभ के हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा ऋषभ, और कर क्या रहे हो तुम? क्यों इतना हक जता रहे हो? मेरे बड़े भाई नहीं हो तुम जो इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? और करण भाई भी यहाँ होते तो वो भी ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते जैसा तुमने किया है। ऋषभ गुस्से में बोला और उसका हाथ छोड़ दिया। हाँ, तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, स्टॉप कंपेयरिंग मी विद हिम। समर ने दोनों हाथ सामने बांधकर एक के बाद एक शिकायतें करते हुए कहा, अच्छा तो फिर वैसा बर्ताव क्यों कर रहे थे तुम? तुम्हें पता भी है तुमने मेरी पूरी प्रतिष्ठा खराब कर दी मेरे दोस्तों के सामने। मैं कितनी मुश्किल से उन लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, और तुम एकदम से वहाँ आ गए और फिर ऐसा बर्ताव? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। समर की बातें सुनते हुए ऋषभ उसे घूर रहा था। ये सब कहते कहते ऋषभ कुछ नहीं बोला, बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। समर अपनी तरफ से बहुत गंभीरता से बात कर रहा था, लेकिन ऋषभ के इस तरह हंसने पर समर का मूड और भी खराब हो गया। वो गुस्से में बोला, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा जोक सुना दिया तुम्हें जो इतनी हंसी आ रही है? ऋषभ मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या रोऊं? टिपिकल बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, और बातें भी वैसी ही। ऊपर से बोलते हो तुम्हारी प्रतिष्ठा बिगाड़ दी। शराब पीने से कौन सी अच्छी प्रतिष्ठा बनती है? ऋषभ ने एकदम सीरियस होने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए ही समर की ओर देख रहा था। ऋषभ के इस तरह हंसने पर समर को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए समर ने जानबूझकर ऐसी बात कही जिससे ऋषभ को बुरा लगे। ओ प्लीज, तुम तो ये बात बोलो ही मत, क्योंकि तुम तो खुद इतनी ज्यादा ड्रिंक करते हो, फिर भला तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? ब्लडी डबल स्टैंडर्ड्स। ऋषभ एकदम सीरियस लुक देते हुए बोला, अच्छा तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा ड्रिंक करता हूँ, और कैसे पता चला ये? और चलो करता भी हूँ तो क्या, कम से कम अपनी मर्जी से करता हूँ, इस तरह किसी के उकसाने पर नहीं। और मेरी उम्र भी लीगल है, तुम्हें पता है 25+ हूँ मैं, लेकिन तुम अभी शायद 20 के भी नहीं होगे, है ना? इसलिए प्लीज मेरी बराबरी करने की तो सोचो ही मत। समर ने जवाब दिया, कैसे पता चला? अब तुम भी यहाँ पर हो तो कोई फ्रूट जूस पीने तो आए नहीं होगे यहाँ पर? और 20 नहीं, मैं 22 साल का हूँ, और तुम्हारी बराबरी करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया था। तुम्हें पता है पहली बार मुझे किसी ऐसी जगह पर आने का मौका मिला, और वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चला जाता तुम्हारा अगर मैं भी थोड़ी ड्रिंक कर लेता तो? उन दोनों ने अपनी बहस में ये ध्यान ही नहीं दिया कि वे एग्जिट डोर के पास खड़े हैं। तभी कुछ लोग वहां से निकले। उनमें से एक लड़की, जो थोड़ी देर पहले भी सबसे बात कर रही थी, उन दोनों को साथ देखकर वहीं रुक गई। उसने ऋषभ की ओर देखकर कहा, सो ही इज योर स्पेशल पर्सन, गुड चॉइस। लड़की ने इतना कहा और मुस्कुरा कर सबकी ओर आँख मारकर गेट से बाहर निकल गई। समर ने लड़की की बात सुनी, लेकिन उसे सही से समझ नहीं आया कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। इसलिए लड़की के बाहर जाते ही समर ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, कौन थी वो लड़की? तुम्हें जानती है क्या? और क्या कहा उसने? किसके बारे में बोल रही थी? ऋषभ ने लापरवाही से जवाब दिया, नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बस ऐसे ही, और मैं नहीं जानता उसे, बस अभी यहाँ पर ही मिली थी। वैसे चलो, अब इतनी रात को क्या अकेले घर जाओगे? वो फिर से समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला। समर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, चला जाऊंगा मैं, आखिर एक लड़का हूँ, मुझे लड़कियों की तरह प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज। इतना कहकर वो गेट से बाहर निकल गया। ऋषभ ने उसके पीछे अपने सिर पर हाथ रखते हुए हल्के से सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। रात के 1 बज रहे थे और वो नाइट क्लब मेन शहर से काफी दूर एक VIP एरिया में था। समर यहाँ पर अपने दोस्तों की कार में आया था, लेकिन अब जब वो उनके साथ रुक नहीं रहा था तो उनके साथ वापस जाने के बारे में कैसे सोच सकता था। इसलिए वो सीधा सड़क की ओर टैक्सी देखने लगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। समर वहाँ खड़ा हुआ। 5 मिनट बाद भी उसे दूर दूर तक कोई टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आया। उसने कैब बुक करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन तभी एक ब्लैक मर्सिडीज कार उसके सामने आकर रुकी। कार उसके टायर के पास आकर रुकी, जिससे समर थोड़ा सा हड़बड़ाकर पीछे हट गया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन पर था। समर ने बिना देखे गुस्से से कार वाले पर चिल्लाया, व्हाट द हेल, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और कार इतनी साइड में लेकर आने की क्या जरूरत है? सड़क पर चलाओ ना। ऋषभ ने कार की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए आराम से कहा, कैजुअल बेबी बॉय, इतना गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता है। समर उसकी बात से इरिटेट होते हुए बोला, क्या बेबी बॉय लगा रखा है? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अडल्ट हो मैं भी, और तुम्हारे पास कार है तो यहाँ क्यों रुके हो? जाओ ना, तुम्हें नहीं लेट हो रहा? ऋषभ ने धीमी आवाज में खुद से कहा, ऐसे कैसे चला जाऊं तुम्हें यहाँ छोड़कर। समर अपनी जगह पर खड़ा था, इसलिए उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया कि ऋषभ ने क्या बोला। वो उसे इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाला और कैब आने में भी काफी समय लगेगा, इसलिए वो मन ही मन उसके साथ जाने की सोच रहा था। इस बार ऋषभ ने थोड़ा रौब झाड़ते हुए तेज आवाज में कहा, चलो अच्छा, अब बैठो कार में, बाकी की शिकायतें रास्ते में कर लेना, वैसे भी तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। ये बात सुनकर समर ने पहले तो ऋषभ की ओर देखा, लेकिन फिर ऋषभ ने अपने बराबर वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। समर चुपचाप आकर उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ऋषभ ने हल्की सी स्माइल दी और कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। अगली ओर करण डिनर करके शिविका के घर से निकलने ही वाला था कि काव्या ने उसे वहाँ रुकने के लिए जिद की। रुद्र पहले ही चला गया था क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, लेकिन करण को शिविका और काव्या के साथ काफी देर हो गई थी। जब वो जाने लगा तब काव्या ने उसे जाने नहीं दिया। इस बात पर शिविका ने काव्या को डांटा तो करण बीच में आकर उसे बचा लिया। इस पर शिविका ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, इसे इस तरह से बिगाड़ो मत बात करण, ये लड़की हर बात पर जिद करने लगी है। करण ने हमेशा की तरह काव्या का साथ दिया, अरे नहीं, बस मुझे रुकने के लिए ही तो बोल रही है, ऐसी और कौन सी गलत जिद कर रही है, और तुम काव्या के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बिहेव करती हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हो उसके सामने, नॉर्मल तो तुम ऐसे नहीं हो ना करण, बाकी सबके साथ।
करण ने थोड़ी दूर पर मुंह बनाकर बैठी काव्या की ओर देखकर कहा, बाकी सब में और काव्या में फर्क है शिविका, वो एक छोटी बच्ची है, उसके साथ हमें प्यार से ही पेश आना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं, हर बार उसे डांट देती हो, देखो कैसे गुमसुम हो गई है मेरी बेबी डॉल। शिविका ने करण से पूछा, अच्छा डांटू नहीं तो फिर क्या करूं, रुकोगे क्या तुम उसकी जिद पूरी करने के लिए? इतना बोलकर शिविका चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने क्या बोल दिया, करण उसकी आंखों में देख रहा था। करण ने जवाब दिया, हाँ रुक सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, वैसे भी कौन सा घर पर इंतजार कर रहा है, बस समर को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मैं काव्या को समझा दूंगा या फिर उसके सोने के बाद वापस चला जाऊंगा। शिविका तुरंत मना करते हुए बोली, अरे नहीं रुक सकते हो, यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और काव्या भी इतनी जल्दी सोती नहीं है। शिविका की बात सुनकर करण के चेहरे पर स्माइल आ गई। काव्या आई और उनकी बात सुनकर खुशी से उछलते हुए बोली, ये करण अब हमारे साथ रहेगा ना हमेशा ही, और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। काव्या की बात सुनकर शिविका ने उसे गुस्से में आंख दिखाते हुए कहा, काव्या देखो अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। शिविका को फिर से गुस्से में आते देखकर करण ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम रहने दो मैं हैंडल कर लूंगा। शिविका दांत पीसते हुए बोलना चाहती थी, करण तुम, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही करण काव्या को लेकर उसके कमरे की ओर चला गया। शिविका वहां खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। काव्या करण के साथ ज्यादा खुश लग रही थी। शिविका ने ये नोटिस किया और बेबसी से सिर हिलाते हुए खुद भी काव्या के कमरे की ओर बढ़ गई।